मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 13 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का यहां हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है वह इनफैक्ट मुझे कपिल शर्मा जी ने प्रोवाइड किया है। कपिल शर्मा यानी कि कपिल शर्मा जो आज के जाने माने स्टैंडिंग कॉमेडियन हैं और नाइट विद कपिल शर्मा शो आपको मालूम है कि कितना अधिक लोकप्रिय हुआ था, जो अब लगभग लगभग खत्म सा हो गया है। मित्रों, उनके नाम से आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और अभी अभी शायद 2-3 दिन पहले की ही बात हो, अखबार में उनका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था और उसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें की जाए। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि कपिल शर्मा का जो शो था वो कितना अधिक पॉपुलर था और वो टॉप 10 में फर्स्ट सेकंड रैंक पर लगातार आ रहा था और देखते ही देखते कपिल शर्मा पूरे देश के सेलिब्रिटी बन गए और उससे भी बड़ी बात है कि हृदय के ताज भी बन गए। मैंने जानबूझकर के शब्द इस्तेमाल किया, हृदय का ताज, हालांकि सिर का ताज होता है, हृदय का नहीं होता, लेकिन आप सब समझ गए होंगे। मित्रों, नो डाउट कि वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनमें अपने समय की गहरी समझ भी है। मतलब जिस तरीके से वो हास्य पैदा कर देते हैं एक सामान्य से सामान्य चीजों में, दांतों तले उंगली दबा देना लेना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने उनके अंदर भारतीय जीवन जो है उसकी भी बड़ी सूक्ष्म समझ है। शायद उसका कारण यह रहा हो कि वो पंजाब के शहर में रहे हैं, ग्रामीण जीवन को बहुत अच्छे से देखा समझा है, मध्यम निम्न मध्यम वर्ग से हैं, तो वो उनमें जीवन की एक बड़ी तीखी और बड़ी धारदार समझ पैदा हो जाती है और उसका खूब जमकर इस्तेमाल, बड़े पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कपिल शर्मा जी ने अपने शो में किया। फिर आपको मालूम है कि उनके साथ जो उनकी टीम थी उनके कुछ लोगों से उनके विवाद पैदा हुए और विवाद कुल मिलाकर यह था कि जब वे ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे थे तो एरोप्लेन में उन्होंने कुछ अपने दोस्तों से अपशब्द कह दिए, कुछ बहुत ही यूं कह लीजिए कि अपमानित करने वाले शब्द कह दिए और अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाला, और फिर उनकी जो टीम थी वो टूट गई। गुलाटी, जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से जो फेमस है ग्रोवर साहब, वो सब उस टीम से अलग हो गए और देखते ही देखते उनका शो अब बंद सा हो गया है, बंद ही हो गया है, सात शब्द भी क्यों लगाया जाए। नो डाउट मित्रों, कहां वह एक चरम स्थिति थी कपिल शर्मा की और कहां ये बिल्कुल डाउनफॉल है। और अब उनकी कुछ दिनों में फिल्म भी आने वाली, इस बीच में उन्होंने एक फिल्म भी की जो ठीक ठाक रही, काफी लोगों ने उस फिल्म को सराहा। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा राइज एंड डाउनफॉल आप कुछ ही समय में देख लेते हैं, कुछ ही समय में देख लेते हैं। मित्रों, डाउनफॉल का एक कारण ये होता है कलाकार के साथ कि हर कलाकार की अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा को टच कर लेने के बाद उससे ऊपर जाना उसके लिए संभव नहीं होता, तो या तो वहां वह थम जाता है या फिर वो धीरे 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 नीचे की ओर ही आने लगता है, और ज्यादातर यही होता है कि नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन कपिल शर्मा का जो डाउनफॉल है वो दूसरे कारणों से है और आप जानते हैं कारण जो अभी मैंने बताया। इससे भी जो बड़ी बात है मित्रों, जो आज की मेरी चर्चा का विषय है वो दो हैं। ये तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई ताकि आप मेरी बात को इस बैकग्राउंड में अच्छे से समझ सकें। पहली बात तो यह है कि कपिल शर्मा ने जो रियलाइज किया है कि मुझसे गलती हुई और कहां गलती हुई और कितनी बड़ी गलती हुई, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सच मानिए तो हम सबको कपिल शर्मा को सैल्यूट करना चाहिए। लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, जानते हुए भी गलती स्वीकार नहीं करते, और सच पूछिए तो उस गलती के कारण जो वो भोग रहे हैं इसके बाद भी वो स्वीकार नहीं करते। सच यह है कि जो हमारा अपना ईगो होता है ना, जो अहम होता है, जो मैं होता है, वो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर नहीं देता। लगता है कि जैसे ही हम गलती स्वीकार करेंगे हम छोटे हो जाएंगे। कपिल शर्मा जी ने इसे झुठलाया, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया और बड़े ओपन तरीके से स्वीकार किया। उन्होंने क्या कहा, अभी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, उन्होंने दो बातें कही। पहली तो यह कि मैं काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया, बहुत ज्यादा उसकी वजह से मुझे टेंशन होने लगी। मैं इधर आपके हास्य कॉमेडी का भी की भी शूटिंग कर रहा था, दूसरी तरफ फिल्म की भी शूटिंग कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। जब टेंशन में रहने लगा तो मेरे लिए जरूरी हो गया शराब का सहारा लेना और मैं फिर शराब पीने लगा। और शराब जब मैंने पी और पीनी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे एक जो वक्त आया, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, शराब मुझे पीने लगा। और जो अभी मैं आपको घटना बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय जो घटित हुई, जो उनके पतन का कारण बनी, वो कारण इसलिए वो उत्पन्न हुआ क्योंकि उस समय वो नशे में थे, यानी कि अपनी चेतना पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, वो पूरी तरह से अपना संतुलन खो चुके थे। अब आप देखिए कि हुआ क्या मित्रों। हुआ ये कि एक तो आप सेलिब्रिटी बन गए, देखते देखते देश के इतने बड़े कॉमेडियन बन गए, सम्मान मिलने लगा, अकूत संपत्ति आने लगी, पैसा आने लगा। मतलब उस समय कहा जाता है कि बड़े बड़े जो स्टार्स नहीं कमाते थे, कपिल शर्मा उनसे ज्यादा कमा रहे थे। तो ये धन और प्रसिद्धि, ये जो दोनों हैं आदमी को भ्रमित करने के लिए, सच पूछे तो शराब से भी ज्यादा नशीली होती है, ये आपके ईगो को बढ़ा देती है, ये सच पूछे तो हमारे अपने बारे में एक कंफ्यूजन पैदा कर देती है, भ्रम पैदा कर देती है, लगता है कि जैसे कि हम तो कोई देवता हो गए हैं, हम हमेशा ही ऐसे बने रहेंगे, ये भावना दिमाग में घर कर जाती है जिसको हम उस समय समझ नहीं पाते। एक तो इसका नशा, प्रसिद्धि का नशा, धन का नशा, और ऊपर से नशे का नशा यानी कि शराब का नशा, इन दोनों ने मिलकर जो कुछ कराया उसके परिणाम हमारे सामने हैं। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि इसके बाद मैं किस तरीके से कंबल में अपना मुंह छिपाकर रोता रहता था, ये उन्होंने बात कही। मित्रों, ये जो उन्होंने स्वीकार किया अपनी कमी को, ये बहुत बड़ी बात है। स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि इसे मैं यूं कहूंगा कि उन्होंने रियलाइज किया है, आत्मस्वीकृति है, यह स्वीकृति नहीं है, आत्मस्वीकृति है। स्वीकृति और आत्मस्वीकृति में जो फर्क होता है फ्रेंड्स, स्वीकृति तो हम ऊपरी तौर पर कर देते हैं कि माफी मांगो, अच्छा ठीक है भैया माफ कर दे, सॉरी, ये ऊपरी है। लेकिन जो आत्मस्वीकृति होती है वो अंदर से स्वीकृति होती है। देखिए, उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए, आप माफी मांगिए, और इनफैक्ट वो कोई उनसे अपने साथियों से माफी नहीं मांग रहे हैं डायरेक्ट, इसके माध्यम से वो हिंदुस्तान की जनता से माफी मांग रहे हैं कि मुझसे ये गलती हुई। और मुझे तो ये लगता है मित्रों कि माफी मांगने से भी ज्यादा वो जो यहां काम कर रहे हैं वो लोगों को सीख दे रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं के अंततः क्या परिणाम होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में आकर के उससे छुटकारा पाने के लिए शराब जैसे चीजों का सहारा लेने लगते हैं, तो हमारा अंत कहां होता है, यह हमें बता रहे हैं और अपनी घटना के माध्यम से बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज हमारे सामने घटित हो रहा है ये आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए इतिहास नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, हम इतिहास के ही एक टुकड़े में रह रहे हैं। हम अभी जहां रह रहे हैं यही कुछ दिनों के बाद इतिहास बन जाना है। तो यदि हमारे आने वाली पीढ़ी इतिहास से सीख ले सकती है, जैसे कि हमसे कहा जाता है कि अपने पिछले इतिहास से कुछ सीखो, तो जो हम अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं, कि हमें उन सबसे सीख नहीं लेनी चाहिए? वर्तमान तो इतिहास से ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। इतिहास के हम गवाह नहीं हैं, हुआ था नहीं मालूम, हमें बताया जा रहा है। हुआ था भी तो कैसा हुआ था, कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं मालूम, जो बताया जा रहा है हम उसे ही सच मान रहे हैं। अगर हम उससे सीख ले सकते हैं या हमसे सीख लेने की बात कही जाती है, तो मित्रों जो हमारे सामने घट रहा है, जिसके हम गवाह हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम भोग रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, उसे तो हमें सीख लेनी ही चाहिए। मित्रों, याद रखिए कि हम सब इतिहास के माध्यम से अपने वर्तमान को जी रहे होते हैं, लेकिन उसी दौर में, उसी के समानांतर, बिल्कुल पैरेलल हम एक इतिहास रच भी रहे होते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि इस तरह का असंतुलन आता क्यों है? क्या सबके साथ होता है ऐसा ही, या कुछ लोग इसे संभाल ले जाते हैं? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के साथ तो यही होता है जो कपिल जी के साथ हुआ है, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, उसे हम संभाल नहीं पाते हैं। उसे संभालने के लिए मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है, एक तरह की आध्यात्मिक साधना की जरूरत पड़ती है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज। धर्म को मैं अध्यात्म से अलग मानता हूं, धर्म को मैं अध्यात्म तक पहुंचने का एक रास्ता मानता हूं, समझता हूं। ये मेरी समझ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी बिल्कुल ऐसा समझे, प्लीज आप इसे बिल्कुल इस रूप में न ले, मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूं। क्योंकि जिनमें वो आध्यात्मिकता आ जाती है, आध्यात्मिक समझ पैदा हो जाती है, या उसका जो थोड़ा बहुत भी अनुभव करने लगते हैं, फिर उन्हें ये सारी बातें उत्तेजित नहीं करती, ये उन्हें सामान्य सी चीजें लगती हैं। फिर वो क्या सोचते हैं मालूम है आपको? वो ये सोचते हैं कि मुझे एक काम दिया गया है, मैं उस काम को कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं, कराने वाला कोई दूसरा है और उसको पूरा करने वाला भी कोई दूसरा है, यानी कि मैं एकमात्र माध्यम हूं, मैं माध्यम मात्र हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। धीरे धीरे वो यहां तक पहुंच जाते हैं कि मैं तो एक माध्यम हूं, कौन करा रहा है मुझे नहीं मालूम। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह मैंने मैरी कॉम के बारे में आपसे बात की थी, और मैरी कॉम ने यही स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक सांसद भी हूं, और मैं एक पत्नी भी हूं, और मैं मां भी हूं, और मैं खिलाड़ी भी हूं, और यह सब कैसे हो जाता है मुझे नहीं मालूम। आपने सुना था वो, ये कैसे हो जाता है मुझे नहीं मालूम। ये स्थिति आध्यात्मिकता की स्थिति होती है, मैं ये सब कर रहा हूं कैसे हो जाता है मुझे नहीं मालूम, यानी कि किसी कोई और कराता है। इसे ही दोस्तों गीता में कहा गया है, कर्ता भाव से मुक्त होना, कर्ता भाव से मुक्त। और गीता का यही संदेश है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। यह कर्ता भाव से मुक्त हो जाना, और जब हम कर्ता के भाव से मुक्त हो जाते हैं तो सच पूछे तो एक आंतरिक संतुलन की स्थिति आ जाती है। अंदर से हम अपने आप को बहुत ही कूल, बहुत ही शांत और बहुत ही संतुलित महसूस करने लगते हैं, उत्तेजना खत्म हो जाती है और जीवन इस तरीके से चलने लगती है जैसे वसंत की बयार बह रही हो। तो फिर बात खत्म हो गई, फिर आपको कोई भी बात असंतुलित करके आपके मुंह से इस तरह के वाक्य नहीं निकलवा सकती, आपके हाथों से उस तरह के काम नहीं करवा सकती जो आपके हमारे किसी के भी पतन का कारण बने। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।